नमस्कार भारत, आज है तारीख 21 जून, दिन गुरुवार। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासी परिवारों को साथ रखने के फैसले पर किए हस्ताक्षर। अब बच्चे नहीं होंगे अपने माता पिता से जुदा।
We do want to keep families together. This is a problem. If you look at some of those horrible scenes from
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने क्यों छोड़ा अपना पद और पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रमुख क्यों कर रहे हैं एनकाउंटर की बात।
मैंने बोला था यहाँ जो लोग हमारे डेमोक्रेटिक राइट को छीन रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता को मार रहे हैं पुलिस के सामने, ये जो गुंडे हैं इनको एक ही रास्ता एनकाउंटर, जैसा यूपी में हमने किया है, पुलिस ने किया है।
होंगी खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुआ सिनी से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को उनके बच्चों से अलग न किए जाने के एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। नए कानून के मुताबिक अमरीका की सीमा में घुसने वाले अवैध प्रवासी परिवारों को अब एक साथ हिरासत में रखा जाएगा। हालांकि अगर माता पिता के हिरासत में लिए जाने से बच्चों पर गलत असर पड़ने की आशंका हो तो उन्हें अलग ही रखा जाएगा। नए आदेश में ये भी साफ है कि अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पहले की तरह ही लागू रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की कुछ प्रमुख एयरलाइंस ने प्रवासियों से अलग किए गए बच्चों को अपने विमानों में ले जाने से इनकार कर दिया है। फ्रंटियर ने कहा कि उसे खुद के एक फैमिली एयरलाइन होने पर गर्व है। वहीं साउथ वेस्ट एयरलाइन ने कहा कि वो लोगों को मिलाना चाहती है, न कि जुदा करना। हंगरी की संसद ने अपने यहाँ अप्रवासियों को आने से रोकने के लिए कई कड़े कानून पारित किए हैं। इनमें अवैध अप्रवासन में मदद करने को अपराध करार दिया गया है। नए कानून में उन संस्थाओं के लिए भी सजा का प्रावधान है जो प्रवासियों की मदद करती है। हंगरी की सरकार का कहना है कि वो अपने देश की सुरक्षा और पहचान से समझौता नहीं करना चाहती, इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टोर ओबान अपने यहाँ मुस्लिम प्रवासियों के बसने के सख्त खिलाफ हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता हंगरी के नए कानूनों की आलोचना कर रहे हैं। कनाडा में गांजे की बिक्री और इस्तेमाल को कानूनी मान्यता मिल गई है। इसकी बिक्री आगामी 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही उरुग्वे के बाद कनाडा गांजे की बिक्री को कानूनी मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया है। कनाडा के न्याय मंत्री जॉर्डी विल्सन रेबॉल्ड ने कहा कि नए कानून से देश के अमीर नौजवान आपराधिक और अवैध गतिविधियों में लिप्त होने से बचेंगे। उन्होंने कहा,
It leaves behind a failed model of prohibition. A model that is made...
नया कानून पुराने असफल मॉडल को पीछे छोड़ता है। पुराने मॉडल से संगठित अपराधी अमीर हो रहे थे और हमारे नौजवान खतरे में पड़ रहे थे। अब युवा कानूनी मान्यता वाले सप्लायर से गांजा खरीद सकेंगे। ये थे कनाडा के न्याय मंत्री जॉर्डी विल्सन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली के गृह मंत्री मेटेओ साल्विनी ने सुझाव दिया है कि भूमध्य सागर से बचाए गए प्रवासियों को स्पेन को संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पेन शरणार्थियों को स्वीकार करने और उनकी व्यवस्था के लिए किए गए वादे को निभाने में नाकाम रहा है। पिछले सप्ताह इटली और फ्रांस ने शरणार्थियों से भरे एक जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद 600 से ज़्यादा लोगों से भरे जहाज को स्पेन ने अपने यहाँ आने दिया था। साल्विनी ने फ्रांस पर निष्पक्ष हिस्सेदारी ना निभाने का भी आरोप लगाया है। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि उत्तर कोरिया के सरकारी आंकड़ों में वहां के बच्चों के सेहत में सुधार की बात सामने आई है। यूनिसेफ और उत्तर कोरियाई अधिकारियों के एक साझा सर्वे में पता चला है कि फिलहाल वहां कुपोषित बच्चों का आंकड़ा घटकर 20% हो गया है। 2012 में आंकड़ा 28% था। पूर्वी एशिया और पैसिफिक में यूनिसेफ की रीजनल डायरेक्टर कैरिन हलशोफ ने कहा, हर पांच में से एक बच्चा बुरी तरह कुपोषण का शिकार है। 6 साल तक की उम्र के बच्चों में 3 में से सिर्फ एक को जरूरी पोषण मिलता है। अच्छी खबर यह है कि कुपोषण के मामलों में कमी आई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अवैध प्रवासियों को लेकर कड़ा रवैया दिखाने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में नरमी बरती है। उन्होंने अमरीका में अवैध तरीके से घुसने वाले प्रवासियों से उनके बच्चे अलग रखने की नीति को पलट दिया है। अब से ये बच्चे अपने परिवारों के साथ रह सकेंगे। इससे पहले कई बच्चों की तस्वीरें सामने आने के बाद अमरीका की इस नीति की निंदा हो रही थी। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए सिंधु वासिनी से।
ये अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो प्रवासी परिवारों को साथ रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें मजबूत भी बने रहना है, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़े तो लाखों लोग अमरीका की सीमा में घुस आएंगे। ये कहते हुए ट्रंप ने आखिरकार अवैध प्रवासियों को उनके बच्चों से अलग न किए जाने के एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। उन्होंने वादा किया है कि अब प्रवासी परिवार एक साथ रहेंगे। अब अमेरिका की सीमा में घुसने वाले अवैध प्रवासी परिवारों को एक साथ हिरासत में लिया जाएगा। हालांकि माता पिता के हिरासत में लिए जाने से अगर बच्चे पर गलत असर पड़ने की आशंका है तो उसे अलग ही रखा जाएगा। आदेश में यह नहीं बताया गया है कि बच्चों को उनके माता पिता से कितने समय के लिए अलग रखा जाएगा। आदेश में आप्रवासन के उन मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा गया है जिनमें एक ही परिवार के कई सदस्यों को हिरासत में लिया गया हो। ट्रंप ने कहा कि वो अपने माँ बाप से अलग हुए बच्चों की तस्वीरें देखकर पिघल गए और इसलिए उन्होंने ये आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद परिवारों को अलग होते देखना पसंद नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी जोड़ा कि वो अमेरिका की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा,
We want security for our country. The Republicans want security and insist on security for our country.
हम रिपब्लिकन देश की सुरक्षा चाहते हैं और हम ये जोर देकर बताना चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर दया और करुणा है। हम परिवारों को साथ रखना चाहते हैं, ये बहुत अहम है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। विवादित कानून के मुताबिक अमरीका की सीमा में अवैध तरीके से घुसने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे प्रवासियों को उनके बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जाता है और उन्हें अलग रखा जाता है। नए कानून के अनुसार भी अवैध रूप से सीमा लांघने वालों को हिरासत में लिया जाएगा और जेल भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ रखा जाएगा। नए आदेश में ये भी साफ है कि अवैध प्रवासियों को लेकर अमरीका की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पहले की तरह ही लागू रहेगी।
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले नीति आयोग के प्रमुख अरविंद पनगड़िया भी अपना पद छोड़ चुके हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि अरविंद सुब्रमण्यन पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वापस अमरीका जा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने वरिष्ठ पत्रकार प्रंजय गुहा ठाकुरता से पूछा कि अरविंद सुब्रमण्यन के जाने की क्या कोई और वजह भी हो सकती है।
जब अरविंद सुब्रमण्यन जी का अपॉइंटमेंट हुई थी लगभग 4 साल पहले, तो वहाँ पे भी उस समय एक बहुत ही एक विवादित विषय था कि क्योंकि एक एक पूरा एक सार्वजनिक एक मंच से भारतवर्ष तो दवाई के नीति के ऊपर आलोचना किया था अरविंद सुब्रमण्यम जी, और उस समय लोग उठाए कि ऐसे व्यक्ति को आप क्यों भारतवर्ष ले आए। मगर और उस समय कुछ ऐसे हमने ये भी सुना है कुछ सरकार के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर कोई स्वदेशी जागरण मंच के अंदर ऐसे भी लोग थे जो नाखुश थे, मगर फिर भी उनको उन्होंने आर्थिक सलाहकार बनाया, मुख्य आर्थिक सलाहकार, प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो आज वो जा रहे, मगर मैं समझता हूँ कि इतना दिन रहने के बाद, आर्थिक समीक्षा पेश करने के बाद जा रहे, इसके साथ हम और भी जो अर्थशास्त्री जो सरकार से यहाँ पे आए थे और फिर वापस अमेरिका चलेगा, शायद हम तुलना नहीं कर सकते। और इसमें हमारे एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, ये है डॉक्टर अध्यापक पानागारिया जी, अरविंद पानागारिया जी। तो दोनों अरविंद शायद अलग अलग कारण के लिए गए हैं, मगर एक चीज साफ है कि पानागारिया जी क्यों नीति आयोग का अध्यक्ष का पद छोड़ के गए थे, उसका कारण था कि वो नाखुश थे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ अगर अरविंद सुब्रमण्यम जी नाखुश थे तो किसी को बताया नहीं, वो सार्वजनिक मंच से नहीं बताया।
लेकिन सर जिस तरीके से, जैसे रघुराम राजन साहब, उन्होंने आरबीआई के गवर्नर का अपना जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने से पहले ही इनकार कर दिया, उसको पहले ही कह दिया कि नहीं हम जाना चाहते हैं। उसके बाद अरविंद पनगड़िया साहब और अब अरविंद सुब्रमण्यम साहब जो है अपने निजी कारणों से जा रहे हैं, क्या इससे ये संकेत नहीं मिलता कि देश की अर्थव्यवस्था में या अर्थव्यवस्था को लेकर जहां फैसले लिए जाते हैं वित्त मंत्रालय में सब कुछ ठीक नहीं है?
हम जो सवाल का जो दूसरा भाग है ना आपने जो पूछा, इसके साथ हम बिल्कुल सहमत, मगर रघुराम राजन जी के साथ आप तुलना करेंगे शायद उसमें भी रघुराम राजन खुद कहा कि हम नहीं रहना चाहते यहाँ पे, और ये भी बहुत सारे लोग साफ साफ कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। तो एक तरह से नया सरकार आने के बाद रघुराम राजन जी को वो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का पद से हम नहीं कहेंगे हटाया गया था, मगर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे, स्वदेशी जागरण मंच में थे और शायद सरकार में भी थे, वो नाखुश थे। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है राज्यसभा, तो वो तो साफ साफ काम रघुराम राजन जी को नहीं चाहते, मगर ये भी आप भूलिए मत, यही सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ सबके सामने कहा हम अरविंद सुब्रमण्यम को नहीं भी पसंद करते हैं। तो ऐसा है कि हाँ दबाव आता है, कुछ लोग तुरंत चले जाते हैं, कुछ लोग समय लेके जाते हैं।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रंजय गुहा ठाकुरता, जो अरविंद सुब्रमण्यम के मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ने की वजहों पर रोशनी डाल रहे थे। उधर हैदराबाद विश्वविद्यालय के दिवंगत दलित छात्र रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और केरल के राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बीच एक शब्द के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। दरअसल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने राधिका को मदद के रूप में दो चेक भेजे थे जिसमें से एक में कोई खराबी पाई गई। दोनों के बीच विवाद सुलझ गया था, लेकिन इस दौरान भाजपा ने इसे रोहित की मां के साथ बदसलूकी करार दिया। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
कभी कभार एक शब्द भी माहौल बदल सकता है, ऐसी एक कहानी अब हैदराबाद से लेकर केरला और दिल्ली तक भी पहुंच गई है। दरअसल दिवंगत रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और केरला की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या IUML के बीच वाद विवाद का कारण एक शब्द है। सामान्य तौर से पत्रकार राधिका वेमुला से ये सवाल पूछते आए हैं कि किस शख्स ने उनसे अपना वादा निभाया है। राधिका वेमुला ने पिछले हफ्ते कहा कि उन्हें मुस्लिम लीग से दो चेक आए थे और उसमें से एक चेक को बैंक ने खारिज कर दिया था। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो चेक बाउंस हो गया है, तो राधिका ने उस शब्द को बिना समझे हाँ कह दिया। जब पत्रकारों ने उसको लेकर बड़ी खबर बना दी तो तब राधिका को समझ आया कि गलती का कारण क्या था। उन्होंने बीबीसी को बताया, हमें चेक बाउंस का मतलब समझा नहीं आया था, लेकिन आपको ये कह सकती हूँ कि रोहित की मौत के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आश्वासन दिए थे, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लीग ने अपना वादा निभाया है। ये थे राधिका वेमुला के शब्द। मुस्लिम लीग ने वादा किया था कि वो राधिका को घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए देगी। मुस्लिम लीग की युवा शाखा के राष्ट्रीय सचिव CK सुबैर ने कहा, हमारा वादा ये था कि जब कभी घर की जमीन हासिल की जाएगी या अपार्टमेंट खरीदा गया तो हम उन्हें पैसा दे देंगे। 2 साल के बाद उन्होंने हमें बताया कि उन्हें गुंटूर शहर में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए एडवांस चाहिए। हमने 2.5 लाख के दो चेक भेजे जिसमें से एक चेक में कुछ गलती की वजह से उसको बैंक ने खारिज कर दिया था। हमने एक और चेक उन्हें भेज दिया है। ये थे CK सुबैर के शब्द। दिलचस्प बात यह है कि जब राधिका और मुस्लिम लीग के बीच का मामला सुलझ गया तभी BJP के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा,
देश भर में लेके जाना, खासतौर पे केरल में जिस प्रकार से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उनको झांसा देके, उनको गलत वादे देके कि हम तुम्हें 20 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख रुपए से तुम्हारा घर बना देंगे, आप आके हमारी रैली को संबोधित करिए, आप जनता में आरोप लगाइए, एक दुखित घटना को गलत प्रकार से पेश करिए और फिर उस वादे को पूरा नहीं करना, थोड़ा बहुत कुछ भेज के वो भी बैंक में 2.5 लाख रुपए के दो चेक दिए जिसमें एक चेक बाउंस भी हो जाए।
इस मामले में BJP का इस तरह का रुख कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जनवरी 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद ही देश में दलितों की BJP के खिलाफ नाराजगी बड़े पैमाने पर उभर आई थी। वहीं मुस्लिम लीग के लिए राधिका ने केरला में बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी किया था। हालांकि इस मामले से समझा जा सकता है कि एक शब्द नहीं समझने से क्या क्या हो सकता है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दिलीप घोष ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सत्ता आई तो वो उनके कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर करवाएंगे। हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने उनसे बात की और पूछा कि क्या विरोधियों से निपटने के लिए हिंसा ही एकमात्र रास्ता है।
मैंने बोला था यहाँ जो लोग हमारे डेमोक्रेटिक राइट को छीन रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं पुलिस के सामने, ये जो गुंडे हैं इनको एक ही रास्ता एनकाउंटर, जैसा यूपी में हमने किया है, पुलिस ने किया है, इनके साथ वही करना चाहिए। ये बात मैंने बोला वहाँ।
नहीं, ये कहा जा रहा है कि आपने कहा कि गोलियों की कोई कमी नहीं है और अगर जिस तरीके से ये हिंसा जारी है तो चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देंगी।
तो जो भी बोला माइक के सामने, डीएम ऑफिस के सामने बोला, उसमें छुपाने की कुछ नहीं है। यही बात मैंने बोला था कि यूपी में जाए वहाँ गुंडों की बोलवाला था, क्यों किया है? क्योंकि ये तो सबके ऊपर है, तो पुलिस कानून नहीं देखेगी कुछ नहीं, तो हम कहाँ जाए? तो इनके साथ वही होना चाहिए जैसा यूपी में हो रहा है।
लेकिन सर, यूपी में जो हो रहा है वो पुलिस कर रही है, पश्चिम बंगाल में तो पुलिस आपके पास नहीं है।
हम जब सत्ता में आएंगे तभी करेंगे ना, आज थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि आज सरकार और पुलिस मिलकर हमको मार रहे हैं, किसके पास जाएंगे हम? हमको नॉमिनेशन करने नहीं दिया जाता है। जो पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लेते, कल हमारे अगेंस्ट में 100 मोटर केस किया है वो पुलिस, हम लिखित में जो एफआईआर करने जाते हैं हमको निकाल दिया जाता है, भगाया जाता है, तो किसका पास जाएं हम?
एक प्रश्न ये बनता है कि जब आप पश्चिम बंगाल में भाजपा के चीफ हैं, यानी नंबर एक नेता हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा के, जब इतने बड़े स्तर का नेता सीधे तौर पर हिंसा की बात करेगा तो कानून की बात कौन करेगा?
जो कानून का रखवाले हैं उनको करना चाहिए, वो तो करते नहीं है, और हम ही एकमात्र बोलते हैं इसका खिलाफ, और तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं है। जब हमारे ऊपर आता है, 8 गर्भवती महिलाएं घर छोड़कर आई हमारे ऑफिस में है, और खाली घर छोड़कर नहीं, प्रदेश छोड़कर हमारे लोग यूपी बिहार झारखंड आसाम बंगाल उड़ीसा में जाके लोग शेल्टर लेकर रखे हैं। आप पूछिए झारखंड में बिहार में, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हमारे ऑफिस में रखे हैं हमारे लोगों को, घर में गांव में रहने का लायक नहीं है, घर तोड़ दिया, 1500 घर, 3500 लोग घर से बाहर है, 1250 लोग घायल है अभी हॉस्पिटल में, कौन बोलने आता है? जो कानून की बात कर उनको पूछिए,
लेकिन
कानून कहाँ होता है?
लेकिन दिलीप जी, क्या हिंसा का जवाब हिंसा ही हो सकती है? आप
भगवान श्री कृष्ण ने हमको यही सिखाया है, किसी को हजम नहीं होगा तो गोली खाए, लेकिन दिलीप घोष ऐसे ही बात करेगा।
दिलीप जी, डेमोक्रेटिक राइट्स की आप बात करें, लेकिन डेमोक्रेसी में एक प्रॉपर सिस्टम होता है, कानून होता है, अदालत होती है, पुलिस होती है, सुनवाई होती है, और उसके बाद कहीं जाके सजा का
नहीं होती है, ये सब फेल हो जाता है, तब क्या करें?
दिलीप जी, जो नक्सलाइट फिर कर रहे हैं वो भी सरकार में विश्वास नहीं करते, कानून में विश्वास नहीं करते, तो क्या वो सही कर रहे हैं?
नहीं, उनके ऊपर कहाँ टॉर्चर हो, तो जंगल में रहकर मार रहे हैं लोगों को। हम डेमोक्रेटिक्स ओए में कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहाँ चुनाव लड़ते हैं?
नहीं, मैं सर दिलीप जी, अभी हम बात कर रहे हैं आपके गोली वाले बयान की, जिस तरीके से आप इस बयान को जायज ठहरा रहे हैं कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही इसलिए हम हिंसा का रास्ता भी अपनाएंगे, तो यही तो नक्सलाइट कहते हैं।
नहीं, मैं तो बोला कि जब हम चुन के आए तब एनकाउंटर करेंगे, कहाँ बोला कि हम बंदूक लेकर धनाधन मार देंगे किसी को।
अच्छा दिलीप जी, क्या आपके मन में ये बात आती है कि मैं इस तरीके के आक्रामक बयान देता हूँ, इससे लोगों के मन में भी गुस्सा है वो और बढ़ सकता है और हालात और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं?
लोगों को बढ़ना चाहिए, लोग सहन कर लेते हैं तभी तो ये बढ़ता जाता है, चलता रहता है।
ये थे पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रमुख दिलीप घोष, जो अपराधियों के एनकाउंटर की पैरवी कर रहे थे। अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों में क्या कुछ खास है। सभी अखबारों को सिंधु वासनी उलट पुलट रही है, बताएं सिंधु, क्या है आज के अखबारों में कुछ खास?
जी शाहिद, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर खबर है कि पनामा पेपर लीक्स मामले में एक नया डेवलपमेंट आया है और लीक में 12 लाख से ज़्यादा नए कागजात सामने आए हैं, जिनमें से कम 12,000 का कनेक्शन भारतीयों से है, ऐसा अखबार लिखता है। इनमें कई भारतीय नाम हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम है हाइक मैसेंजर के जो CEO हैं कविन भारती मित्तल का। कविन टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मित्तल के बेटे हैं। दूसरी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO जो हैं रविंद्र मराठे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें अरेस्ट किया है पुणे पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने। रविंद्र पर आरोप है कि उन्होंने RBI की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए एक कंपनी को करोड़ों रुपए का कर्ज बांट दिया। एक और खबर टाइम्स ऑफ इंडिया से ही, लखनऊ में एक महिला अपने पति के साथ पासपोर्ट रिन्यू कराने गई, और महिला हिंदू है, उनके पति मुसलमान है। तो महिला का आरोप यह है कि वहाँ उनके साथ बदतमीजी हुई और पासपोर्ट अधिकारी जो है उन्होंने उनके पति से कहा कि पासपोर्ट रिन्यू करवाना है तो हिंदू धर्म अपनाओ। इसके अलावा आज विश्व योग दिवस है तो
जी, मैं देख रहा हूँ कि अखबारों में तरीके तरीके की कई तरह की तस्वीरें हैं, कोई जहाज पे योगा करते हुए, कोई कहीं योगा करते हुए,
तो और तो सभी तस्वीरें और खबरें हैं योग से जुड़ी हुई। जनसत्ता में खबर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में 60,000 लोगों के साथ योग करेंगे।
हाँ, और रात ही उत्तराखंड पहुंचे हैं।
और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने की खबरें भी सभी अखबारों में हैं। एक और खबर है दैनिक भास्कर में, खबर है कि पेट्रोल डीजल पे भी शायद 28% जीएसटी लग सकता है और जीएसटी के साथ वैट भी लग सकता है। अखबार ये बात जीएसटी के एक अधिकारी के हवाले से लिख रहा है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु वासनी अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की ऐतिहासिक बैठक के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियार मुक्त करने की बात कही गई है, लेकिन ये कैसे हो पाएगा? उत्तर कोरिया कैसे अपने सभी परमाणु हथियार नष्ट करेगा और अमेरिका की आगे की क्या नीति होगी? दुनिया जहां में इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाश रहे हैं कुलदीप मिश्र।
दुनिया जहां।
They will be met with fire and fury like the world has never seen.
ये हैं पिछले साल अगस्त के डोनाल्ड ट्रंप और अब मिलिए इस साल जून के डोनाल्ड ट्रंप से।
The past does not have to define the future. Yesterday's conflict does not have to be tomorrow's war.
बीता हुआ कल हमारा वर्तमान तय करे, ये जरूरी नहीं। अतीत के विवाद को भविष्य के युद्ध में बदलने नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन किम और मैंने अभी एक साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप में पूरी तरह से परमाणु निरस्त्रीकरण की अपनी अटल प्रतिबद्धता दोहराई है। हम इस समझौते को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सशक्त बातचीत करने पर भी सहमत हुए हैं।
As soon as possible.
एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था और दूसरी ओर उसे अपने मिसाइल परीक्षणों से चुनौती दे चुका, वैश्वीकरण की आर्थिकी से लगभग कट चुका एक छोटा देश। लेकिन फिर सामने आई दोनों देशों के सर्वोच्च नेताओं की हाथ मिलाते हुए बहुप्रतीक्षित तस्वीरें। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की तस्वीरों ने विश्व राजनीतिक पटल पर बेशक कुछ उम्मीदें पैदा की हैं, लेकिन क्या इस मुलाकात ने अब तक उफान मार रही सभी आशंकाओं को भी खत्म कर दिया है? जेएनयू में कोरियन स्टडीज की प्रोफेसर वैजयंती राघवन,
डीन्यूक्लियराइजेशन जब कहते हैं तो इसका मतलब है एक 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 करके नष्ट करें और या फिर इंटरनेशनल एजेंसी आके उसको वेरीफाई करें, चेक करें। लेकिन जहां नॉर्थ कोरिया कंसर्न्ड है, मुझे नहीं लगता है डीन्यूक्लियराइजेशन इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस पे यहाँ तक के लागू हो पाएगा।
ट्रंप और किम के बीच हुए इस समझौते में पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में निरस्त्रीकरण की बात कही गई है, मतलब दक्षिण कोरिया में भी अगर अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां और हथियार हैं तो वे भी अमेरिका को वापस लेने होंगे। लेकिन उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों और तकनीक को लेकर अमेरिका की क्या अपेक्षाएं होंगी? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में प्रोफेसर मुख्तदर खान,
ये हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के जो हथियार हैं वो या तो चाइना को दे दें या अमेरिका को दे दें या रशिया को दे दें या उसको डीकमीशन कर दें। दूसरी चीज ये है कि जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और उसमें सबसे अहम जो कंपोनेंट है वो प्यूरिफिकेशन है यूरेनियम का, तो वो जो प्लांट्स है वो बंद कर दें, यानी उनकी जो सेंट्रीफ्यूजेस है वो बेसिकली तोड़फोड़ कर देंगे। इसका मतलब ये है कि 10 साल के बाद अगर कोई नई हुकूमत आ जाती है और वो वेपन्स बनाना चाहती है तो वो बेसिकली विल बी स्टार्टिंग एट स्क्रैच। तो ये है अमेरिका का गोल। क्या ये होगा? बिल्कुल ही नहीं। अगर नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स चले जाएंगे तो उसके पास जो लेवरेज है वो खत्म हो जाएगा। फिर अमेरिका ऑलरेडी साबित कर चुका है कि इट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ईरान के मामले में इट हैज ब्रोकन द डील।
सिर्फ ईरान ही नहीं है जिसकी मिसाल किम जोंग उन के मस्तिष्क में होगी, वो लिबिया के बारे में भी सोच रहे होंगे जिसका जिक्र इस मुलाकात से पहले किया था अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने। जॉन बोल्टन 2003 में बुश कार्यकाल के समय लिबिया के साथ हुए निरस्त्रीकरण पर समझौते का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसने लगे हाथ उस वक्त के लिबियाई प्रशासक कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के हश्र की यादें ताज़ा कर दी। समझौते के 8 साल बाद 2011 में गद्दाफी को अपने मुल्क में एक पश्चिम समर्थित हथियारबंद विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः ये लड़ाई गद्दाफी हार गए। विद्रोही लड़ाकों ने सिर्त की एक सड़क पर उनकी हत्या कर दी। प्रोफेसर मुख्तदर खान कहते हैं कि जॉन बोल्टन उत्तर कोरिया के संबंध में जिस लीबियाई मॉडल का जिक्र कर रहे थे उसे गलत समझा गया।
जॉन बोल्टन का जो रेफरेंस था वो 2003 के ऊपर था, जहां पर जो बेसिक प्रिलिमिनरी जो टेक्नोलॉजी थी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ लीबिया ने, वो बेसिकली यूं कहिए कि वो गाड़ी बनाना चाह रहा है, ऑलरेडी कुछ नहीं बनाया, सिर्फ टायर्स बनाया। तो उसने कहा ठीक है मैं टायर बनाना छोड़ देता हूँ, आप मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी में दाखिल कर लें, मुझे एड दे दें वगैरह वगैरह। 2003 के बाद लीबिया में न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ कोई जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। तो वो मॉडल जॉन बोल्टन चाहते थे कि ये डी न्यूक्लियराइजेशन के बाद नॉर्थ कोरिया के पास कोई रास्ता भी ना हो, कोई डायरेक्शन ही ना हो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ।
जॉन बोल्टन को भले ही गलत समझा गया, लेकिन जाने अनजाने इसने समूची दुनिया को गद्दाफी की कहानी तो याद दिला ही दी। लेकिन प्रोफेसर मुख्तदर खान को लगता है कि उत्तर कोरिया लीबिया वाली गलती नहीं करेगा। प्रोफेसर खान ये भी कहते हैं कि अमेरिका की समूची राजनीतिक जमात इस समझौते से खुश नहीं है, क्योंकि अमेरिका को इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या निकट भविष्य में ऐसे कुछ द्वंद्व हैं जो स्थितियों को फिर से बिगाड़ सकते हैं? वैजयंती राघवन।
ट्रंप ने ये कहा है कि वी विल स्टॉप मिलिट्री एक्सरसाइज। अब ये वाली बात मुझे नहीं लगता है कि साउथ कोरिया के साथ डिस्कस करके की थी। अब नाउ साउथ कोरिया को लगता है कि दिस इज अ मेजर कंसेशन। इसका ये मतलब है कि ट्रंप चूक रहा है अपने कमिटमेंट टुवर्ड्स साउथ कोरिया। इसको लेकर भी हो सकता है देयर कुड बी डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री पार्टीज कंसर्न्ड।
ट्रंप और किम की मुलाकात से दोनों देशों की दुश्मनी पर ब्रेक तो फिलहाल लग गया है, लेकिन रिश्तों में उलझने अभी कम नहीं हुई है।
दुनिया जहां पेश कर रहे थे कुलदीप मिश्र, कैसा लगा हमें जरूर लिखें। बढ़ते हैं आगे। रूस में फीफा फुटबॉल विश्व कप जारी है। कल ग्रुप बी के मैचों में पुर्तगाल ने मोरक्को को 1-0 और स्पेन ने ईरान को 1-0 से हरा दिया। वहीं ग्रुप ए मैच में उरुग्वे ने सऊदी अरब को 1-0 से हराया। वहीं ग्रुप ए से अंतिम 16 में उरुग्वे और रूस का जाना तय हो गया है, जबकि मिस्र और सऊदी अरब विश्व कप के मैदान से बाहर हो गए हैं। सुनते हैं अन्य खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको रूस लेकर चलते हैं, जहां पर फीफा विश्व कप का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। आज फीफा विश्व कप में डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होना है, तो ग्रुप सी में ही फ्रांस और पेरू का मुकाबला होना है और ग्रुप डी में अर्जेंटीना और क्रोएशिया का। आपको बता दें, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मुकाबले में हार का सामना किया था फ्रांस के खिलाफ, तो वहीं डेनमार्क ने जीत हासिल की थी पेरू के खिलाफ। और उस लिहाज से देखा जाए तो ग्रुप सी में डेनमार्क के अंक 3 हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के 0। वहीं बात अगर फ्रांस और पेरू की करें तो ग्रुप सी में फ्रांस 3 अंकों के साथ सबसे ऊपर तालिका में है, तो वहीं पेरू 0 पर है। और ग्रुप डी के मुकाबले क्रोएशिया और अर्जेंटीना की बात करें तो क्रोएशिया 3 अंकों के साथ सबसे ऊपर है तालिका में, तो वहीं अर्जेंटीना दूसरे पायदान पर 1 अंक के साथ है। ऐसे में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए डेनमार्क के खिलाफ जीतना बेहद जरूरी है, तो वहीं पेरू को भी फ्रांस के खिलाफ जीतना बेहद जरूरी है। और अब अगर आपको हॉकी की तरफ लेकर चले तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हॉकी को भारत का आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। आपको बता दें, हॉकी को पहले ही अनधिकृत रूप से भारत के राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला है और ओडिशा नवंबर में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। और अगर हम इतिहास में जाएं तो हॉकी ने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत को दिलाए हैं और इस लिहाज से ही नवीन पटनायक मोदी से ये आग्रह कर रहे हैं।
चलते चलते एक बार फिर मुख्य समाचार सिंधुवासिनी से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को उनके बच्चों से अलग न किए जाने के एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमरीका की प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों ने प्रवासियों से अलग किए गए बच्चों को अपने विमानों में ले जाने से इनकार कर दिया है। हंगरी की संसद ने अपने यहाँ अप्रवासियों को आने से रोकने के लिए कई कड़े कानून पारित किए हैं। कनाडा में गांजे की बिक्री और इस्तेमाल को कानूनी मान्यता मिल गई है। इसकी बिक्री आगामी 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इटली के गृह मंत्री मेटेओ साल्विनी ने सुझाव दिया है कि भूमध्य सागर से बचाए गए प्रवासियों को स्पेन को संभालना चाहिए। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाया कमलेश मठीनी ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम 7:30 बजे होगी। तब तक देश दुनिया की ताजा तरीन वेबसाइट के लिए bbchindi.com है। मोहम्मद शाहिद को समस्त सहयोगियों के साथ दी अनुमति। नमस्कार।